चरिता अमृत आदि लीला अध्याय दो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीव पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों चक्रवाकों तथा ब्रह्मरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है, जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है। वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा तथा भगवान ये तीन उद्देश्य हैं और चमकदार ज्योति आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप ये इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण हैं। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद हैं। वे परम दिव्य हैं। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अपने विभिन्न प्राकृतियों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है, जिसे उपनिषदे दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती हैं। वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान सकता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकता। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रेता है, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित हैं, वे ब्रह्म लोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदयों में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ? मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है, तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र हैं। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण छह ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। उनके तुल्य कोई नहीं है। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्गों पर चलते हैं, वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर हैं, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न हैं। इन ईश्वर श्री कृष्ण के दो हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के चार हाथ हैं, जिनमें वे शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करते हैं। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे जिसका गर्भ जल में है। जो नर गर्भोदक्षायी विष्णु से उत्पन्न हुए हैं और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आपके पिता तो नारायण हैं, मैं तो एक गोप बालक हूँ। आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं। कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आप से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सब के परमात्मा हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों घड़ों का मूल कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय हैं। नार शब्द समस्त जीवों के समुच्चय को बताता है और अयन शब्द उन सब के आश्रय को बतलाने वाला है। अब एव आप आदि नारायण हैं। यह हुआ पहला कारण। अब मैं दूसरा कारण बताता हूँ, कृपया उसे सुने। जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार हैं, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उन्नत हैं। अतएव आप हर एक के आदि पिता आदि स्वामी हैं। वे पुरुषावतार आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। क्योंकि आप समस्त जीवों के आश्रयों की रक्षा करते हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया मेरे तीसरे कारण को सुने। ब्रह्मांड असंख्य हैं और दिव्य वैकुंठ लोक अनेक हैं। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत दोनों में समस्त जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं। क्योंकि आप इन सब कर्मों के साक्षी हैं, अतः आप सब का सार जानते हैं। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई न तो जीवित रह सकता है, न हिल सकता है और न अस्तित्व बनाए रख सकता है। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, जो आप कह रहे हैं उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैंने जो कहा है वह सत्य है। वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों के हृदयों में रहते हैं आपके अंश मात्र हैं। नारायण के कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई तथा शिरोदक्षाई रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से त्रिजन कार्य करते हैं। इस प्रकार वे माया से जुड़े हुए हैं। जल में चयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा हैं। समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु सारे जीव समुदाय के परमात्मा हैं और शिरोदक्षाय विष्णु हर व्यक्तिगत जीव के परमात्मा हैं। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इनके ऊपर चतुर आयाम में भगवान कृष्ण हैं, जिनका भौतिक शक्ति माया से कोई संपर्क नहीं होता। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्य गर्भ तथा कारण हैं, किंतु वे इन तीन उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ आयाम तुरीय में रहते हैं। यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित हैं, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं करती। ये सब माया से परे हैं। यह भगवान का ऐश्वर्य है, यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थिर कर ली है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। इन तीनों स्वरूपों के स्रोत आध्यात्मिक आकाश पर व्योम में स्थित नारायण हैं। वे आपके विलास विस्तार हैं, अतएव आप परम नारायण हैं। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार हैं। अब यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। इस श्लोक श्लोक 30 में सूचित सत्य श्रीमद् भागवत का सार है। यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान सभी श्री कृष्ण के पहलू हैं। अतएव वे तरह तरह से तर्क वितर्क करते हैं। क्योंकि नारायण के चार हाथ हैं, जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है, जबकि कृष्ण अवतार मात्र हैं। इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु भागवत काव्य इन सब का बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। मेरे भाइयों, कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने तीन विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वैय सत्य हैं, आखिरी वास्तविकता हैं। वे अपने आप को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन तीन पहलुओं में प्रकट करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवत का अन्य श्लोक सुनो। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश कला हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कला हैं, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। एक विपक्षी कह सकता है, यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण हैं, जो दिव्य लोक में स्थित हैं। वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा उत्तर क्यों प्रस्तुत करते हो जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है? वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। यदि मैं उद्देश्य कर्ता का उल्लेख न करूं, तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं। अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। इसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य कर्ता वह है जो उसे ज्ञात रहता है। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं, यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है, किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है। अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किनके अवतार थे यह ज्ञात न था। पहले ऐसे ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना होती है, तत्पश्चात पुरुषावतारों के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आए हैं। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी, तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है, जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है। इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही हैं। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंशी तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। तब वे यह कहते समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान हैं और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होती। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है। यह अविचारणीय तालमेल है। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवताओं के उद्गम हैं, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र हैं। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि मूल दीपक मानता हूँ। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण हैं। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। इसमें श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड के अव्ययों की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, सृष्टि का पालन, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, कर्म के लिए प्रेरणाएं, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 10वां विषय अन्य सब के आश्रय हैं। परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 9 का वर्णन किया है। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय एवं धाम हैं। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत उद्गम हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्राभव तथा वैभव ये उनके 2 प्राकट्य हैं। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड कुमारावस्था। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। इन छह रूपों के असंख्य भेद हैं। यद्यपि वे अनेक हैं, किंतु सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। चित्त शक्ति जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा उसके वैभव को धारण करती है। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों की कारण है। इन दोनों के बीच की तटस्था शक्ति असंख्य जीवों की बनी है। ये ही तीन प्रधान शक्तियां हैं, जिनके असंख्य भेद और उपभेद हैं। ये भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार और उनकी तीन शक्तियां हैं। ये सभी परम पूर्ण श्री कृष्ण से प्रकट हैं। ये सब उन्हीं में स्थित हैं। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम हैं। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सब के उद्गम हैं। उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते हो, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क उत्पन्न करते हो। वे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य है। उन्हें शिरोदक्षाय विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती, किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं। अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण शिरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है। प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। निष्ठापूर्ण जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करे, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं व्रज राज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत के आदि लीला द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भगवान के रूप में किया गया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।